अच्छा, ये भक्तगण भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 14 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए कल्याणकारी हो। आज का युग कलयुग कहलाता है, कला का युग कहलाता है। आज के युग में संवेदना खत्म है, हृदय की जो संवेदनाएं होती है, हृदय में जो प्रेम होता है, जो मानो लुप्त होता जा रहा है, वो केवल कलात्मक जीवन ही आरम्भ हो चुका है। हम तो ये लोग कलात्मक ढंग से ही जीने का प्रयत्न करते हैं। ना कोई ममता है, ना कोई प्यार है, ना वात्सल्य भाव है। भगवान की भक्ति तो कर तो कहना ही क्या, वो तो एक आडम्बर बन चुकी है और अपने को बड़ा भक्त कहलाने की एक होड़ लगी है। बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के पूजा करने का भी एक दिखावा ही रह गया है। कुछ अंत हम देखते हैं कि कलयुग में धर्म के सभी लक्षण लुप्त प्राय हो गए हैं, है ना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या मद मत्सर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग ये भी नहीं देखते कि मेरा है, अपना है, पराया है, भाई का इष्ट है, बहन का इष्ट है, कोई भी इष्ट है, लेकिन धन के लिए वो इतने मर मिटते हैं कि वो कुछ भी दूसरे के लिए हानिकारक कार्य कर बैठते हैं। यही कारण है कि आज के युग में बहुत से लोग, बहुत से क्या मैं कहूँगी 99% लोग जो हैं, वो बहुत दुखी है। कोई मन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई कर्म से दुखी है, मतलब सबको कोई ना कोई दुख जकड़ा हुआ है। उस दुख से लाचार होकर के वो मरते हैं, फिर जीव जन्म लेते हैं। मरना जन्म लेना ही उनका एक काम है। और दूसरा कार्य जो भगवान की प्राप्ति के लिए ये मानव देह मिली है, इसके लिए तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, सोचने का उनको समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो एक कलात्मक जीवन हो चुका है, एक मशीनी जीवन बन गया है, मशीनों का ही हो गया। मनुष्य भी एक मशीन की भांति अपने आप में मशीन भी बन चुका है। जब मनुष्य पुनः द्वारा अपने में हृदय की भावना लाएगा, क्षमा दया वात्सल्य भाईचारा प्रेम भक्ति ज्ञान सेवा आदि सद्गुणों का विकास करेगा, तो फिर से शत्रु आने में कोई नहीं लगेगा। सत्य किसको कहते हैं, जिसमें सत्य साथ लगता है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। कहते हैं सत्य नहीं बदलते, इसको सदगम्य झूठ से सत्य की ओर जाओ, से प्रकाश की ओर जाओ। ये हमारे वैदिक श्लोक है और ये बिल्कुल 16 ठीक है, लेकिन मनुष्य इनको लेकर कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं वेदों की ओर, कि वेद भी हमारे कोई आदि ग्रंथ है और वेद भगवान की वाणी है, वो मैंने और आपने या किसी महान ऋषि ने नहीं लिखे हैं, जो लिखे नहीं गए हैं, वो भगवान की वाणी ऋषियों द्वारा जो शुद्ध ऋषि होते हैं, उनका तन मन शुद्ध होता है, उनके मन में वो श्लोक आ जाते हैं, उनके मस्तिष्क में वो श्लोक आ जाते हैं, उनको दिखाई देते हैं, वो स्वयं अपने आप पढ़ते हैं उन श्लोकों को, पढ़ करके उनको याद हो जाते हैं और फिर वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं और शिष्य फिर अपने शिष्यों को सुनाते हैं। इस तरह से ये वेद जो है ये आदि श्लोक है, तो भगवान की वाणी कहलाते हैं। तो इन श्लोकों में इतना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, अगर हम एक श्लोक को भी अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन सतयुग का जीवन हो जाएगा, हम सतयुगी आदमी कहलाएंगे। जो हमारे में आपस में लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष और काम क्रोध है वो सब समाप्त हो जाएगा। अब मैं इस वचन के पश्चात आपको उमा देवी तीर्थ ले जाती हूँ। ये शब्द मैंने इसलिए बोले, श्री महाराज जी का ये आदर्श था, वो आदर्श है भी आज भी है, भले कोई हम अपनाए या ना अपनाए, लेकिन श्री महाराज जी का श्री माँ देवी तीर्थ में ये आदर्श है, आदर्श रहेगा कि जो अच्छा अब मैं आपको ले जाती हूँ 1986 की नवरात्रि 4 अक्टूबर को आरंभ हुई। बीच बीच में भक्तों का आगमन होता है, भक्तों से मिलकर श्री महाराज बालवत लीला करते हैं। उनसे कभी कभी माँ का प्यार, ममता और वात्सल्य पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। देखिए कैसे थे हमारे श्री महाराज जी, एक इतने वृद्ध, इस वर्ष 1986 में उनकी आयु कितनी है, 89 years old है वो, और फिर भी अपने भक्तों से ऐसे मिलते हैं जैसे एक छोटा सा बालक मिलता है, और कभी वो माँ का प्यार देते हैं और कभी वो माताओं से माँ का प्यार लेते हैं। ये माँ की भांति भक्तों को बढ़िया भोजन बनाकर खिलाने में दिव्य आनंद की अनुभूति पाते हैं। उनकी कौन खिलाता है अच्छे ढंग से भोजन? माँ। अगर माँ अपने हाथों से बढ़िया भोजन बनाकर खिलाए तो बच्चे के संस्कार बहुत ही अच्छे सुंदर बनते हैं। 10 अक्टूबर 1986 को निःशुल्क चिकित्सालय का उद्घाटन कार्य निश्चित हुआ, इसलिए 9 अक्टूबर को शहर के डॉक्टरों की बैठक बुलाई। श्री महाराज जी ने सभी डॉक्टरों से गरीबों की निष्काम सेवा करने की मांग की और उन्हें बताया कि उन्हें जीवन का सही उपभोग एवं सदुपयोग करने के लिए निष्काम सेवा अनिवार्य है। ये कितना बड़ा रहस्य है जो श्री महाराज तीर्थ में महाराज जी स्वयं 1986 में चिकित्सालय निःशुल्क औषधालय खोल गए हैं। इस बैठक में डॉक्टर हर्ष मेहरा, डॉक्टर पी डी लाल, डॉक्टर विमल चंद, डॉक्टर पी के आहूजा तथा डॉक्टर बलदेव अवस्थी सम्मिलित हुए थे। सभी डॉक्टरों ने करवद होकर के निःशुल्क चिकित्सालय में सेवा हेतु स्नेह देना स्वीकार किया। श्री महाराज जी ने जब अपना ये प्रस्ताव इन डॉक्टरों के सम्मुख रखा तो डॉक्टरों की खुशी का ठिकाना ना रहा, वो बहुत प्रसन्न और अपने को धन्य मानने लगे और उन्होंने उसी समय कहा कि ठीक है महाराज जी, हम अपने अपने क्लिनिक से एक एक घंटा एक एक डॉक्टर या 2 घंटे प्रतिदिन 10 से 1 बजे तक का समय था अवश्य देंगे। 10 अक्टूबर को निःशुल्क चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ और उस दिन मंदिर को बहुत ही सजाया गया था। मंदिर के सामने की सड़क रंग बिरंगी झंडियों से शोभायमान है, सभी अंतरंग भक्त तथा डॉक्टर उपस्थित हैं, अनेक कन्या भक्त भी आए हैं। हवन कन्या पूजन करके ठीक 11 बजे एक बालिका सीता ने फीता काटा उद्घाटन हुआ। पंडित श्री राम जी ने श्री महाराज जी से गणेश पूजन करवाने के पश्चात चिकित्सालय में प्रवेश करवाया। डॉक्टर प्रदीप लाल ने अपनी ओर से चिकित्सा के लिए कुछ सामान भी भेंट किया तो अन्य डॉक्टरों ने भी कुछ कुछ दवाइयां भेंट की। डॉक्टर हर्ष मेहरा ने कई लोगों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया तो डॉक्टर प्रदीप लाल ने श्री महाराज जी को कुर्सी पर बिठाकर उनका रक्तचाप नापा। इस प्रकार इस निःशुल्क चिकित्सालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया और ये औषधालय निःशुल्क औषधालय श्रीमान देवी तीर्थ में नेशनल हाईवे बनने तक अपने कार्य में व्याप्त रहा। अब विजयदशमी दशहरा का मेला आरंभ हो गया है, हजारों भक्त एवं श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के उपरांत भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक है। 29 अक्टूबर बुधवार को श्री भैरीलाल सूद जी शिमला से आए हैं, उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और फिर श्री महाराज जी के पास बैठ गए। उनकी श्री महाराज जी से बातचीत हो रही है, श्री महाराज जी उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो श्री महाराज जी उनको भैरासु जी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिला रही हैं और देख रही हैं कि उनको भोजन अच्छे ढंग से खिलाया गया या नहीं। इसी प्रकार भाव मगन होकर के वो प्रायः महाराज जी देखा करते हैं कि भक्तों को कोई कमी न रह जाए। इस बार दिवाली भी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाई गई। भक्त लोग आते रहते हैं कि महाराज कभी उपमा, कभी डोसा, कभी इडली, कभी सांभर या बड़ा अथवा पकौड़ी उन्हें खिलाया करते हैं। आज भी उन्होंने डोसा बनाकर भक्तों को खिलाया। आज नमकीन पकवान ही बनाकर खिलाना इन दिनों उनका बड़ा प्रिय कार्य है। 3 नवंबर को मैं अपनी माता जी के घर में गई थी क्योंकि माता जी ने मुझे विशेष कार्य के लिए बुलाया था। श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर मैं अपने माता जी में गई, लेकिन श्री महाराज जी ने कहा था कि मम्मी जी शिव मंदिर आ जाना, अगर बाबा को भूख लगेगी तो बाबा को भोजन कौन देगा, ना कि मैं महाराज जी को दिन का भोजन करवा के ही गई थी। अभी मैं थोड़ी देर ही वहाँ माँ के पास बैठी थी और माता जी कुछ विशेष बात कर रही थी या उनके मन में कोई इच्छा है मैं अपनी बेटी को कुछ दूं, वो कुछ इधर उधर कर रही थी कि टेलीफोन आ गया और कहा कि आप शीघ्र आ जाओ। मैंने कहा हाँ महाराज जी मैं अभी आता हूँ, लेकिन फिर कुछ देर हो गई, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर पुनः टेलीफोन आ गया जल्दी आओ माता जी जल्दी आओ। तो फिर मैंने टेलीफोन उठाया और सुना तो देखा, मुझे सुनाई दिया कि महाराज जी बच्चों की भांति कोमल तथा सरल वाणी में बोल रहे थे, मम्मी जी आप जल्दी आ जाओ, मम्मी जी आप जल्दी आ जाओ, और फिर बच्चों की भांति रोने लगे। उनका रोदन सुनकर मैं बात्सल्य भाव से भरपूर हो गई और मुझे लगा कि मेरे बाल गोपाल श्री राम मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। और मैं बड़ी शीघ्रता से जो की त्यों मंदिर आ गई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे देव भगवान बाल रूप श्री राम ही श्री महाराज जी हैं। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी, हथांगिठी जला रखी थी, फिर भी मैंने गर्म पानी की बोतल उनकी सैया में रख दी ताकि मेरे महाराज जी को मेरे भगवान को सर्दी ना लगे। ज्योति हलवाई आया है, श्री महाराज पर अगाध विश्वास है। आजकल भक्त लोग बारी बारी रात्रि में आकर अपना कर्तव्य पालन करते हैं। डॉक्टर लोग भी अपनी बारी से आते हैं। शनिवार 22 नवंबर को डॉक्टर प्रदीप लाल आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरे पास 10th एंड 11th की इंग्लिश थी, इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ाया करती थी और हिस्ट्री भी मेरे पास थी। तो डॉक्टर प्रेम लाल जी उस वक्त 10वीं में पढ़ते थे और 10वीं और 11वीं में 2 साल उन्होंने मेरे से इंग्लिश पढ़ी है। शनिवार 22 नवंबर को डॉक्टर प्रदीप लाल आए और श्री महाराज को प्रणाम करके उनके पास बैठे। उन्होंने दूध और बिस्कुट खिलाया। श्री महाराज जी उन्हें बड़े प्रसन्नता से देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं डॉक्टर साहब खाइए खाइए जरूर खाइए। फिर श्री महाराज जी ने अपना बाजू उनके सामने करते हुए कहा डॉक्टर साहब मेरा निरीक्षण बाबा का निरीक्षण कीजिए, देखो बाबा को क्या बीमारी है। डॉक्टर ने उनका निरीक्षण किया और कहा महाराज जी आप तो योगी हैं, योगी आपको कोई बीमारी नहीं है, परंतु हाँ आपको खून की कमी है। कुछ ही देर में एक अंतर भरता है कि महाराज ने इनके घर का हाल चाल पूछा तो भक्त फूट फूट कर रोने लगा। श्री महाराज जी ने उन्हें समझाया और मुख्य दुख दूर करने का आश्वासन भी दिया। डॉक्टर प्रेम लाल दीप जो आए हैं वो ये सब देखकर बड़े हैरान हो गए और नमस्कार करके उन्होंने विदा ली। श्री महाराज जी ने जो भक्त आया और फूट फूट के रोया उसके दुख दूर करने का आश्वासन भी दिया। जिन केस में श्री महाराज धूप में बैठते हैं, मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उनके दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। दिसंबर का महीना है, सर्दी बहुत है, इसलिए श्री महाराज जी कुटिया से बाहर आकर धूप में बैठ गए। उन्हें सीमेंट में आई हुई दरार दिखी, झट से सफेद पेंट मंगवाकर अपनी उंगली से ही पेंट लगाकर दरार भरना आरंभ कर दिया। देखिए श्री महाराज जी कितने बड़े कर्मयोगी और कितना मंदिर के लिए उन्होंने योगदान किया, अपनी हड्डियां अर्पित कर दी है। से उन्होंने ये बहुत बड़ा तीर्थ से उसको सींचा है। धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक एसपी अपनी पत्नी और बच्चों सहित श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। श्री महाराज जी ने उनका तिथ्या दूध फल आदि से करवाया। पुलिस अधीक्षक श्री महाराज को इस आयु में भी इस प्रकार सीमेंट में सीमेंट की दीवार को भरते हुए देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, देखो धन्य हैं आप इतने क्रियाशील हैं, ऐसे ही होने चाहिए देशभक्त और प्रभु भक्त। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, आसमान में बादल होने से श्री महाराज कुटिया में ही विराजे हैं। कुटिया लोग को जाने की बातें कर रहे हैं, उनका कहना है एवर रेडी सदा प्यार। वे अधिकतर कहा करते सदा प्यार हो, ना जाने भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए। और श्री महाराज जी अपने पास जो टॉर्च रखते है एवर रेडी का ही टॉर्च उनके पास था। वो जब भी टॉर्च को उठाते हैं दिन के समय उसको चल निकाल करके धूप में रखते हैं, वो कई बार वो मेरी ओर देखते और कहते मम्मी जी एवर रेडी। और कई बार उस समय कोई भक्त आ जाए तो उन्हें भी देखते यही कहते एवर रेडी, देखो बाबा ने तो टॉर्च भी एवर रेडी ही रखा है। सदा तैयार हो, ना जाने भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए। श्री महाराज जब भी नश्वर शरीर को त्याग आत्मा के परमात्म तत्व में लीन होने की बात करते तो मैं ममता बश में रोकती। श्री महाराज जी बड़े प्यार से मुझे समझाते, देखो मम्मी जी जब इस शरीर से सेवा नहीं होगी तो बाबा जनता का अन्न भी नहीं खा सकता, इसलिए बाबा को जाने दो। श्री महाराज जन सेवा के लिए ही शरीर को बनाए रखने के हक में थे। बाईस दिसंबर को माँ शारदा का जन्म दिवस मनाया गया। एक ब्राह्मणी को भोजन खिलाकर वस्त्र आदि दान देकर सब भक्तों को भोजन खिलाया गया। माँ शारदा के पति श्री महाराज जी का विशेष भाव है, जो संघ उन्होंने स्थापित किया उसका नाम भी शारदा माँ सेवा संघ ही रखा है। उनका कहना है कि माँ शारदा ने सेवा द्वारा एक आदर्श उपस्थित किया है कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सबको इस आदर्श को मानना चाहिए तथा इस पर चलना भी चाहिए। सर्दी बढ़ जाने के कारण आजकल श्री महाराज बाहर कम ही निकलते हैं, फिर भी जन साधारण के लिए शौचालय बनवाने का कार्य चल रहा है। आप सब भक्तों ने ये जो प्रसंग सुना और इस प्रसंग में जो निहित आपको आदर्श और विचार आइडिया मिले वो आज के युग से कितना अधिक प्रबंधित है ये आप सब जानते हैं और जान जाएंगे कि देखो उसमें मंदिर में आने वाले लोग जो थे वे नदी के किनारे ही प्राय जाते थे तो महाराज जी को लगा कि क्यों लोग इधर उधर घूमे क्यों ना शौचालय ही बना दिया जाए। कि इस तरह से मैं देखती हूँ कि श्री महाराज जी ने एक मनुष्य के लिए मानव के लिए जो जो आवश्यकता होती है वो सब मंदिर में अपने स्वयं अपने हाथों से ही बनवाया है। हम लोगों ने तो आगे आकर के उस पर थोड़ा थोड़ा कार्य किया है। श्री महाराज जी स्वयं ही कहा करते थे बाबा ने नक्शा बना दिया है, भूमि जी बाबा ने नक्शा बना दिया, अब आपने आगे चलकर इसमें रंग भर लेना। तो जब महाराज जी ऐसा कहा करते थे तो मेरे सामने भारत माँ का नक्शा जैसा कि नक्शा है भारत माँ का हमारे भारत का वो नक्शा अपने आप आ जाता था। आज भी वो नक्शा मेरी आंखों के सामने भारत माँ का नाम लेते ही आ जाता है। तो रंग भरने का काम कर लेना। तो मैं फिर सोचती हूँ कि वो रंग कैसे भरे जाएं, किस प्रकार से भरे जाएं। लेकिन उनकी कृपा से श्री माँ देवी तीर्थ में अब इसमें तक वो रंग भी भरे जा चुके हैं और कार्य अपनी प्रगति पर है। भगवान सबको सदबुद्धि दे। जय प्रभु। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गीता माँ।